हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के गीतामृत कार्यक्रम में। चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान, इसकी व्याख्या भगवान अर्जुन को कर रहे हैं। और इस अध्याय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक हमने पिछले दो सेटिंग में लिया, जिसमें भगवान अर्जुन को न केवल एक सामाजिक या पूरी सृष्टि के दृष्टिकोण से बता रहे हैं, बल्कि एक बहुत ही व्यक्तिगत दृष्टिकोण से भगवान ने अर्जुन को बताया कि ये दिव्य ज्ञान जो मैंने बड़े बड़े राजऋषियों को दिया, सूर्यदेव, विवस्वान इत्यादि, ये दिव्य ज्ञान अर्जुन मैं तुम्हें क्यों दे रहा। तो 4.3 याद है, सये वायम मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन। आगे भक्तो सिमे सखा चेति रहस्यम ये तद उत्तमम। तो तीसरे श्लोक में इस चौथे अध्याय के भगवान हम सब के सामने नित्यकाल तक एक बहुत ही उत्तम रहस्य का खुलासा किए। एक तो खुलासा, वो भी रहस्य का और वो भी उत्तम रहस्य का। ये तत् उत्तमम भगवान ने कहा। और क्या वो उत्तम रहस्य था जिसका खुलासा भगवान ने किया अर्जुन को? भगवान कहे कि अर्जुन, बाकी सब तो छोड़ दो, मैं व्यक्तिगत रूप से यहां पर जो तुम्हारा सारथी बना हूं, जो पूरे 64 करोड़ योद्धाओं को दिखाते हुए नहीं बल्कि पूरी सृष्टि और कालातीत तक लोगों को ये दिखाने के लिए कि मेरा और तुम्हारा संबंध क्या है, तो इसका खुलासा, इस रहस्य का खुलासा कि इसके वजह से अर्जुन मैं तुम्हें ये दिव्य ज्ञान दे रहा हूं। और तो बहुत से कारण होंगे, परंतु ये रहस्यमय कारण मैं इसलिए तुम्हें बता रहा हूं और इसका खुलासा तुम्हारे द्वारा कर रहा हूं, ताकि जो भी भगवत गीता को अर्जुन के पद चिन्हों पर चलते हुए समझने की कोशिश करना चाहते हैं, उन्हें अर्जुन की तरह भगवान का भक्त होना होगा और भगवान के साथ वो साख्य रस अर्थात प्रेम आदान प्रदान, साख्य रस का अर्थ है आदान प्रदान, भगवान के साथ वो स्थापित करना होगा, तब जाकर भगवत गीता का जो रहस्य है वो खुलेगा, समझ में आएगा। नहीं तो भगवत गीता हर समय रहस्य में ही रह जाती है। जो केवल ज्ञान के दृष्टिकोण से समझना चाहते हैं, तर्क वितर्क इतर के दृष्टिकोण से समझना चाहते हैं, भगवत गीता हर समय रहस्य रह जाती है उनके लिए। तो अर्जुन ने अब अचानक राजऋषियों के बीच अपने स्वयं के विषय में ऐसी रहस्यमय बात सुन ली, तो अर्जुन का हृदय द्रवित हो गया। अब देखिए स्थिति यह है कि बहुत ही टेंस्ड सिचुएशन है। एक तो शंख बज चुके हैं, सारे 64 करोड़ योद्धा आमने सामने तैयार हैं, तैनात हैं, अर्जुन की स्थिति विषाद में, अर्जुन ने गांडीव छोड़ दिया है, कंपन रो रहे हैं और गला सूख रहा है, ऐसी अवस्था में जो उन्होंने व्याकुलता में जो प्रश्न पूछे और बहुत सीरियस क्वेश्चंस अर्जुन के थे कि स्वधर्म के विषय में, कर्तव्य के विषय में, युद्ध लड़ने के विषय में, तो ऐसे सीरियस सिचुएशन में अचानक भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, भक्तोसि में सखा चेति, ही वॉज टेकन अबैक, इसे अंग्रेजी में कहते हैं, अर्जुन आश्चर्यचकित रह गए या बेवाक रह गए। तो इसलिए ये जो आज का श्लोक है, ये अर्जुन द्वारा अब कहा गया, जो कि पिछले श्लोक से इसका बहुत ही गहरा संबंध है। अर्जुन उवाच, अपरम भवतो जन्म, परम जन्म विवस्वतः, कथमेतद् विजानीया, त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन उवाच, अपरम भवतो जन्म, परम जन्म विवस्वतः, कथमेतद् विजानीयाम्, त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन उवाच, अपरम भवतो जन्म, परम जन्म विवस्वतः, कथमेतद् विजानीयाम्, त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन उवाच अर्थात अर्जुन कहे, अपरम भवतो जन्म, हे भगवान आपका जन्म तो आधुनिक है, अपरम, परम जन्म विवस्वत, और विवस्वान सूर्यदेव इनका जन्म तो प्राचीन है, तो आप, क्योंकि भगवान ने अर्जुन को सखा बोला है और अर्जुन भी भगवान को अब तक सखा मान रहे हैं, तो अर्जुन की जहां तक याददाश्त, तो अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि हम तो एक ही समय काल में पैदा हुए, अपरम भवतो जन्म, आधुनिक है हम दोनों का जन्म, परंतु विवस्वान पर जन्म, प्राचीन है इनका जन्म, तो मैं कैसे समझू, कथम एतद् विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति, आपने ये जो कहा है कि आपने विवस्वान को सबसे पहले ये ज्ञान दिया, तो शंका मेरी। तो अब पूरा अनुवाद इस प्रकार से है श्लोक का, सूर्यदेव, अर्जुन ने कहा सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया है, दिया था। आज की चर्चा के विषय हमारे पिछले श्लोक से संबंध, अर्जुन उवाच शब्दों की व्याख्या, अर्जुन नाम की व्याख्या, अपर एवं पर शब्दों की व्याख्या, अर्जुन का जो प्रश्न है उसका तात्पर्य क्या है। एक तो हमें बहुत साधारण सा प्रश्न दिख रहा होगा अर्जुन का, परंतु हमारे आचार्य उस साधारण से प्रश्न के पीछे अर्जुन का मनोभाव और सिद्धांत को प्रस्तुत किए हैं, जो कि बहुत ही समझने योग्य है, ये अर्जुन के प्रश्न का तात्पर्य। तो पिछले श्लोक से संबंध 4.3 में भगवान ने अपने रेगुलर जो श्लोक के टीचिंग्स में थोड़ा पॉज लेते हुए अचानक अर्जुन का गुणगान किया, तो भगवान ने अर्जुन का हृदय द्रवित कर दिया। अब देखिए, कोई भी ग्रंथ हम जब पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग श्लोक जो हैं या कोई प्रसंग जो हैं उसके रूप अलग होते हैं। जैसे भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण, कई श्लोक आप पढ़ोगे तो एकदम फिलॉसफी, बहुत ही गहरी फिलॉसफी सुना रहे हैं। कई श्लोक, अब जैसे पिछला श्लोक है, डायरेक्ट अर्जुन का गुणगान भगवान ने किया, और किस प्रकार का गुणगान किया, स्वयं भगवान के संदर्भ में अर्जुन का रिश्ता। तो फिलॉसफी भी है, भावनाएं भी हैं। कई बार हमको लगता है भगवद गीता मतलब फिलॉसफी फिलॉसफी, नहीं, पिछले श्लोक में दोनों, आज का श्लोक और पिछला श्लोक है क्या, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच में भावनाओं का आदान प्रदान और कुछ नहीं। हां, उसमें फिलॉसफी अवश्य है, परंतु मुख्य मुद्दा इन दोनों भक्त और भगवान के बीच में उनके भक्ति भावना का आदान प्रदान। तो अब जैसे साधारण कोई वार्तालाप चल रहा हो और वार्तालाप के बीच में अचानक कोई आपको कह दे, जिससे आपका वार्तालाप चल रहा है वो व्यक्ति वार्तालाप के बीच में अचानक आपके बारे में कुछ बोल दे, अरे लेकिन आप तो बहुत ही विशेष हो, अचानक वार्तालाप के बीच में आपके बारे में कुछ कह दिया या गुणगान कर दिया, आप तो बहुत विशेष हो, तो तुरंत कोई अगर सिविलाइज्ड है तो वो किस प्रकार से उसको रेसिप्रोकेट करेगा, सिविलाइज्ड है। वो भी उसी प्रकार से रेसिप्रोकेट करेगा जैसे उसे अभी जो वो भावना उस व्यक्ति की उसने व्यक्त की है उन शब्दों के द्वारा, तो वो भी ट्राई करेगा उसी प्रकार से आदान प्रदान करने के लिए। तो अर्जुन भी अब आज के श्लोक में वही कर रहे हैं कि अर्जुन भगवान का हृदय द्रवित करना चाहते हैं। ये होती है भक्त और भगवान के बीच में स्पर्धा कि भगवान भक्त का हृदय द्रवित करते हैं, भक्त भगवान का हृदय द्रवित करते हैं। तो अब अर्जुन अपने आराध्य सखा का गुणगान करना चाहते हैं। तो आप लोगों को लग रहा होगा आज के श्लोक में तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा, क्या गुणगान कर रहे हैं, वो तो डाउट कर रहे हैं। इसलिए हमें प्रभुपाद जैसे आचार्य चाहिए जो अर्जुन के मनोभाव, भगवान के मनोभाव में जाकर उनकी सोच क्या है, उनके विचार क्या है, उनको बाहर निकालकर प्रस्तुत करते हैं। तो इसलिए तात्पर्य समझना इतना महत्वपूर्ण है। तो ये संबंध है दोनों श्लोकों में। तो अब आप स्थिति की कल्पना कीजिए, भगवान ने जो पिछला श्लोक कहा सुनने के पश्चात अर्जुन अब द्रवित हुए। द्रवित होने का अर्थ है अर्जुन का हृदय पिघला और भगवान श्री कृष्ण का यदि एक प्रयोजन होता है अपने भक्तों के साथ तो क्या प्रयोजन होता है, हृदय को द्रवित करना, चाहे वो गीता सुनाकर, चाहे वो रासलीला कर, चाहे गोवर्धन पर्वत उठाकर असुरों का वध कर, कुछ भी भगवान करते हैं, ये ध्यान में रखना कि भगवान श्री कृष्ण का एक में वो उद्देश्य है कि अपने भक्तों के हृदय को द्रवित करे, टू मेल्ट The hearts of his devotees, that is the number one purpose of Lord Krishna. और यदि किसी का हृदय द्रवित नहीं हो रहा तो समझ लेना चाहिए कि वो मनुष्य योनि में रहने योग्य नहीं है, नहीं है। तो एक उदाहरण से हम प्रारंभ करेंगे। बहुत ही सुंदर उदाहरण है। आपने सीलिंग वैक्स देखा होगा, आजकल तो इतना इस्तेमाल नहीं होता। पहले कोई भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट अगर भेजना है आपको तो पोस्ट ऑफिस, या फिर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट है सरकार का, तो उसको सील कैसे करते थे? ये सीलिंग वैक्स, सीलिंग वैक्स, उसको गर्म कर पिघला कर। मुद्दा कौन सा चल रहा है हमारा? द्रवित, उस पर बने रहना। तो होता है क्या, कोई इमेज और सीलिंग वैक्स देख के हम उसमें याद है, अच्छा पोस्ट ऑफिस, आजकल तो पोस्ट ऑफिस है ही। याद है मुझे 5 साल पहले मैंने एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट भेजा था, पहुंचा नहीं था। तो मुद्दे पर रहना, पॉइंट क्या है? हृदय द्रवित। तो ये जो सीलिंग वैक्स होता है, सीलिंग वैक्स की विशेषता क्या है कि कई बार एक देश से दूसरे देश, यदि उनको कोई डॉक्यूमेंट भेजना होता था पहले, तो वो लोग इस वैक्स को पिघलाकर अपने कंट्री का सील उस पर छापते थे। तो जो भी उनके कंट्री का एम्बलम हो गया या सील हो गया या कंपनी का, उसके ऊपर छप जाता था। कब छपता था, कौन से समय? जब तक कि वो पिघला हुआ है, जब तक वो पिघला हुआ, और बहुत कम समय तक वो पिघला हुआ रहता है, उसके बाद तुरंत वो कड़क हो जाता। तो जितना समय वो पिघला हुआ रहता है, उस समय में उसके ऊपर वो सील लगाई जाती है। तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण एक साधक के जीवन में विभिन्न प्रकार से उसके हृदय को पहले पिघलाते हैं, चाहे दुख के द्वारा हो या सुख समृद्धि के द्वारा हो। यह समझना चाहिए कि भगवान सब्जेक्टिवली पिघलाते हैं। अभी हमको लग रहा होगा कि अर्जुन का हृदय द्रवित किया कितने अच्छी तरीके से, उसका गुणगान करते, मेरा क्यों नहीं करते, मुझे क्यों इतनी परेशानी में रखा हुआ है। हां, हो सकता है कि हमारा हृदय केवल उस परेशानी के द्वारा ही द्रवित हो, हिंदी में कहावत मुहावरा है ना, लातों के भूत, गीता से नहीं मानते कई बार। तो पहले जब भगवान हृदय को पिघलाते हैं, तो अब देखना यहां पर एक चेतावनी दी गई है इस उदाहरण के द्वारा, एक चेतावनी दी गई है। जो भी यहां पर उपस्थित हैं सुन लीजिए, चेतावनी, वार्निंग है, वार्निंग। चेतावनी क्या है? यदि भगवान श्री कृष्ण के संपर्क में आने के बाद आपका हृदय द्रवित हुआ, तो समझ लेना कि भगवान श्री कृष्ण का सील लग जाएगा। हरी बोल, अच्छी से बोलिए। तो सील लगने के बाद होता क्या है? उसके बाद चाहे आपका हृदय कठोर हो जाए, पॉइंट क्या है, उसके बाद एक बार पिघल गया, भगवान, देखिए भगवान बहुत ही चतुर हैं और बुद्धिमान हैं। किस समय सील अपना उधर मारते हैं? जब हृदय पिघला है उस समय भगवान सील मारते हैं। उसके बाद में भगवान निष्फिकर हो जाते हैं कि हां, इसके बाद चाहे कितने भी जन्मों में ये अपना हृदय को और कठोर बनाता जाए, उसको हवा मारकर, कभी कभी उसको सुखाने के लिए लोग हवा मारते हैं, धूप में रखो, हवा मारो, उसको सुखाओ जल्दी जल्दी, सुखाओ मतलब कठोर बनाओ। अब बहुत देरी हो गई, क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि जो सील लग गया अब उसको बाहर नहीं निकाल सकते। एक और उदाहरण, मतलब इसी में एक और पॉइंट ये है कि कई बार ये जो सीलिंग वैक्स ये कलरलेस होती, कलरलेस, यहां पर तो जो कलर आपको दिख रहा है लाल, कई बार ये सीलिंग वैक्स कलरलेस होती और जब इसको पिघलाओ उस समय अगर इसमें आप कोई कलर डाल दो तो कलर परमानेंटली पकड़ लेता है। तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, हमारा जो नीरस कलरलेस जीवन है इस भौतिक संसार में उसको पहले पिघलाते हैं, उनके नाम के द्वारा, उनके लीलाओं के द्वारा, श्रवण कीर्तन अर्च विग्रह भक्तों का संग प्रसाद इत्यादि पिघलाते हैं। और पिघला भगवान फिर अपना रंग उसके अंदर डालते हैं। उसके बाद एक बार डाल दिया रंग, सील लग गए, उसके बाद फिर हम चाहे कितना भी प्रयास करें उस रंग को बाहर नहीं निकाल सकते। इसको कहते हैं नेहा भिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम। स्वल्प मात्रा में भी यदि हृदय द्रवित हुआ है भगवान की भक्ति के कारण, तो ये चेतावनी आज भगवान अर्जुन के द्वारा हम सबको दे रहे हैं कि यदि हृदय द्रवित हुआ तो बस अब भगवान से हम छूट नहीं सकते। जैसे पूतना, पूतना आई थी, भगवान ने बुलाया नहीं था उसको, कंस ने भेजा था, पूतना आई और वहां पर भगवान को मारने के लिए, भगवान लेटे हुए पालने में अपनी लीला प्रारंभ करने वाले केवल 6 दिन के हैं भगवान, पूतना आई भगवान 6 दिन के मारने के लिए। भगवान सोच रहे थे कि मैं अब केवल 6 दिन का हूं, अभी तक मेरी लीलाएं मैंने नोट डाउन भी नहीं की क्या क्या करना है मुझे, और तू पहले आ गई मारने के लिए। तो पूतना जो कि विष लगाकर आई अपने स्तनों में भगवान को मारने के लिए, रूप बदलकर इत्यादि क्या कुछ नहीं उसने किया, और भगवान 6 दिन के, भगवान ने जैसे ही पूतना को देखा, पहले तो उन्होंने अपनी आंखें बंद की और आंखें बंद कर भगवान ये सोचने लगे कि ये पूतना ने अपने पिछले जन्मों में क्या पुण्य किया होगा कि ये नंद भवन के आंगन में, न केवल मेरे पिताजी के आंगन में बल्कि अंदर भवन के अंदर आ गई, न केवल भवन के अंदर आई, भवन के अंदर जहां पर मैं एकदम अंदर वाले बेडरूम में लेटा हूं वहां तक घुस गई ये। तो आंख बंद कर भगवान ये देख रहे थे कि इसने कौन से पुण्य किए हैं कि इतने अंदर तक इसको एंट्री मिल रही है, और वो भी यशोदा रोहिणी वो लोग इसका स्वागत कर रहे हैं कि आओ आओ आप तो साक्षात लक्ष्मी देवी जैसी दिख रही हो, हमारे बेटे को आप दूध पिलाओ। क्या इसने पुण्य किया है, भगवान अचरज में चले गए, आंख बंद कर रिवाइंड कर रहे हैं इसकी पूरी लाइफ को, देख रहे हैं कौन से जन्म में क्या पुण्य इसने किया। और फिर भगवान ने सोचा कि चाहे इसने कोई पुण्य किया हो या नहीं किया हो, चाहे इसने कितने भी पाप किए हो, परंतु अब ये आई है मुझे कुछ पिलाने के लिए, चाहे वो जहर क्यों ना हो, चाहे वो विष क्यों ना हो, कालकूट विष क्यों ना हो, परंतु कुछ तो देने आई ये। भगवान का हृदय द्रवित हुआ, ये देखकर भगवान का हृदय द्रवित हुआ और भगवान ने सोचा कि ये खुद से आई है मुझे कुछ देने के लिए, मुझे कुछ पिलाने के लिए, मैं नहीं छोड़ूंगा इसे, क्योंकि मेरे नियम के विरुद्ध है। भगवान के नियम के विरुद्ध क्या है, जो भी भगवान के समक्ष आ जाए किसी भी कारण के वजह से, भगवान का नियम है जैसे हम लोग 4 नियम पालन करते हैं, भगवान का नियम क्या है, जो भी मेरे समक्ष आ जाए मैं नहीं जाने देता उसे, मैं छोड़ता नहीं उसे। तो जब पूतना ने भगवान को लिया अपने गोद में और स्तनपान कराने लगी, भगवान ने जो पकड़ा पूतना को, और जब भगवान ने विष पी लिया, दूध पी लिया और प्राण पीने लगे, तब पूतना को समझ में आया ये तो खतरनाक बच्चा है, तो चिल्लाने लगी सब मुंच मुंच इति मुंचालम, छोड़ रे मुझे छोड़, अरे मेरे प्राण पी रहा है तू छोड़। और भगवान मन ही मन अब सोचने लगे नहीं, अब लेट हो गया, मैं जिसे पकड़ता हूं नहीं छोड़ता। यह है सीलिंग वैक्स का एग्जाम्पल। तो चेतावनी क्या है, यहां पर उपस्थित जितने भक्त, यदि आपका हृदय एक बार द्रवित हो चुका है, बस इट्स टू लेट, सील मर चुका है, अभी भौतिक जीवन भी मर चुका है उस सील के द्वारा। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। तो अर्जुन का हृदय द्रवित जो हुआ पिछले श्लोक में, तो अर्जुन ने ठान लिया कि यदि ये भगवान मुझसे इतना प्रेम कर रहे हैं कि मेरे सारथी बने, और केवल फॉर्मेलिटी के रूप में भगवान सारथी नहीं बने, भगवान हृदय से मेरी सेवा कर रहे हैं और मुझे मेरी शंकाओं को इतने धैर्य से सुन रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं कि जो भी उन्होंने अब तक चौथे अध्याय के शुरुआत तक जो भी ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया, अर्जुन इतने प्रभावित हो चुके हैं कि अर्जुन का हृदय द्रवित होते जा रहा है। और यहां पर तो भगवान ने डायरेक्टली बोल दिया कि अर्जुन तुम मेरे भक्त, न केवल भक्त बल्कि तुम मेरे सखा। तो हमने पिछली बार ये तीन पॉइंट्स लिए थे कि अर्जुन और भगवान की मित्रता का सब्सटेंस क्या है। फेसबुक फ्रेंडशिप नहीं है। फेसबुक फ्रेंडशिप क्या है? बिना फेस देखे फ्रेंड्स बनो, फेस नहीं दिखाओ अपना। हाँ, फोटो में दिखा दो, सामने मत आना। सो मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ फ्रेंडशिप इज यू मे हैव 6,750 फ्रेंड्स ऑन फेसबुक एंड येट बी द मोस्ट लोनली पर्सन ऑन दिस प्लैनेट। सो रियल फ्रेंडशिप should be based on affection, protection and direction, जो कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच उनका स्नेह, भगवान ने जो सुरक्षा प्रदान की, प्रोटेक्शन अर्जुन को, और डायरेक्शन गीता सुनाकर। तो यदि मित्रता हमें किसी के साथ स्थापित करनी है तो कृष्ण अर्जुन दिखा रहे हैं अपने उदाहरण से कि वास्तविक मित्रता की बुनियाद क्या होनी चाहिए। ये तीन मुद्दे, ये बुनियाद होनी चाहिए वास्तविक मित्रता की, या किसी भी रिश्ते में हम उस तत्व को लाना चाहते हैं, चाहे वो पिता पुत्र का रिश्ता हो, चाहे पति पत्नी का, भाई भाई का, मित्रों का, गुरु बंधुओं का, कोई भी रिश्ता हो, उसके अंदर ये तीन जो हैं वो बुनियाद होनी चाहिए। दिस इज द सब्सटेंस ऑफ एनी ट्रू फ्रेंडशिप। तो परफेक्ट फ्रेंडशिप इन दोनों के बीच। अब महाभारत में वर्णन है, बहुत ही सुंदर उदाहरण से बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कितना प्रेम करते थे और कैसी सुरक्षा भगवान अर्जुन की करते थे। एक ज्येष्ठ होने के नाते, एक सखा होने के नाते, दोनों होने के नाते। तो बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है, इस उदाहरण पर गौर कीजिए। यह उदाहरण जब भी मैं सुनता हूं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की मित्रता, तो यह उदाहरण हृदय द्रवित कर देता है। ऐसा उदाहरण ही है। तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की तुलना आंखों से की गई। इस उदाहरण में बताया गया है कि आंख जो है वो अर्जुन है और आंखों के ऊपर जो पलके हैं, आईलिड्स, वो भगवान श्री कृष्ण है। दोनों का रिश्ता देखिए, हमारे आंखों का और आंखों के ऊपर जो पलके हैं, उन दोनों का रिश्ता क्या है। रिश्ता यह है कि जब भी कोई आपकी आंखों पर प्रहार करने आए तो पलकें सबसे पहले आंखों को बचाते हैं बंद कर कर। चाहे कोई सुई भी लेकर आए हमारे आंखों में अंदर धसने के लिए, तो पलकें कहती हैं कि पहले मेरे अंदर से जा। पलकें क्या बोलती है? मेरे अंदर से जाना होगा। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की रक्षा कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर उसी प्रकार से कर रहे थे जैसे पलकें हमारे आंखों की रक्षा करते हैं। और इसके विषय में एक कथा है महाभारत से ही। भगदत्त नाम का ये योद्धा जो कि दुर्योधन के पक्ष से लड़ रहा था कुरु सेना में, और ये भगदत्त इसको एक वरदान मिला हुआ था। ये गदा से प्रहार करता था जैसे कि भीमसेन गदा से प्रहार कर, तो ये गदा से प्रहार करता था और इसको एक वरदान मिला था कि ये जिस किसी योद्धा के ऊपर गदा का प्रहार करे तो उस व्यक्ति को मरना निश्चित है। इसके गदा के प्रहार से वो व्यक्ति मरना निश्चित, फेटल अटैक जिसको बोलते हैं। इसका ये था, ये वरदान इसको मिला था। लेकिन होता है इस भौतिक संसार में कि हर एक वरदान या कोई ऑफर होता है ना उसके साथ शर्तें लागू होती है ना, कंडीशंस अप्लाई होते हैं ना। तो इसको बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने ये वरदान तो दे दिया कि भाई तेरे गदा के प्रहार से व्यक्ति मरेगा अवश्य, परंतु ये वर लग जाता है, परंतु एक ही बार तू यूज कर सकता है उसको, एक ही बार, वन टाइम यूज है खाली, वन टाइम यूज। तो देख ले कौन ऐसा व्यक्ति है पूरी पृथ्वी पर जिसको तुझे मारना है, उसको पहले तो ढूंढ, लेकिन प्रहार एक ही बार कर सकता है। तो अब भगदत्त को ये जो वरदान मिला, दुर्योधन को पता था, दुर्योधन को पता था कि ये भगदत्त को ये वरदान मिला, तो दुर्योधन जो भी घुसखोरी कर करके ऐसे लोगों को रखा हुआ था कि भाई कभी ना कभी ये लोग काम आएंगे, तो ब्राइब दे दे के इनको रख रखा था। कई बार सरकार भी ऐसी चलती है। तो अब दुर्योधन ने भगदत्त को इसलिए, फिर हुआ क्या कि जब भीष्म पितामह, पहले तो दुर्योधन का पूरा विश्वास भीष्म पितामह पर था कि भीष्म पितामह वो जिताएंगे, तो कर्ण तो वो तो था ही नहीं पहले, तो भीष्म पितामह अब वो बाणों की शैया पर लेट गए, अर्जुन ने लेटा दिया। तो अब दुर्योधन व्याकुल होने लगा कि अब क्या होगा, तो भयभीत होने लगा। तो भगदत्त को बुलाया, भगदत्त तेरा गदा निकाल, अब तू काम आएगा मेरे, केवल तू ही काम आएगा। तो भगदत्त कहता है मैं तो भीम के साथ, क्योंकि वो गदा से युद्ध करते थे ना भीम भी, तो मैं तो भीम नहीं, भीम भीम नहीं, भीम मेरे लिए छोड़ दे अर्जुन। दुर्योधन जानता था कि अर्जुन जो है वो कुरु सेना की रीढ़ की हड्डी है। कौन है अर्जुन? कुरु सेना की रीढ़ की हड्डी है अर्जुन। रीढ़ की हड्डी तोड़ दो शरीर पूरा गिर जाएगा। तो भगदत्त को कहा दुर्योधन ने कि तेरा गदा उठा और जो कुछ हो जाए आज के दिन तुझे वो तेरा एक अंतिम, पहला और अंतिम प्रहार, पहला और अंतिम प्रहार अर्जुन के ऊपर करना है। तो उसने कहा ठीक है भाई, जो आज्ञा। तो अब दुर्योधन ने क्या किया कि इस प्रकार से अपनी अपनी सेना को कहा, जो सेना अब तक अर्जुन के साथ लड़ रही थी, अलग अलग योद्धा अर्जुन के सामने आ रहे थे, अर्जुन उनको परास्त कर रहे थे, अचानक दुर्योधन ने अपनी सेनाओं को सब साइड में हो जाओ, भगदत्त चला गया, सब साइड में हो जाओ, सबको साइड में कर दिया, भगदत्त को आगे किया, तू आगे जाओ। अब जो भी योद्धा आगे जाए अर्जुन के, तो अर्जुन वॉर कोड्स के अनुसार, युद्ध के नियम के अनुसार, जो सामने प्रहार करने आ रहा है अर्जुन का, अब उससे लड़ना है। तो अर्जुन तो जानते भी नहीं थे कौन है ये भगदत्त और इसको क्या वरदान मिला है, कुछ अर्जुन को पता नहीं था। भगवान श्री कृष्ण जो सारथी बने वो जानते थे, अंतर्यामी है वो तो सब जानते। तो वो जानते थे कि ये दुर्योधन क्या षड्यंत्र रच रहा है, अभी क्या चाल इसकी है, ये भगदत्त को सामने क्यों लाया अचानक, केवल भगवान जानते थे। और टाइम नहीं था कि भगवान अब अर्जुन को बता सके, टाइम नहीं था क्योंकि सामने आ गया भगदत्त, अब टाइम नहीं था। तो भगदत्त अपना गदा उठाया और वो प्रहार करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, भगवान श्री कृष्ण रथ को इस प्रकार से चलाने लगे, ऐसे रथ को घुमाने लगे, इतनी रफ्तार से रथ को कभी यहां कभी वहां। तो अब वो भगदत्त को एक जगह पर अर्जुन टिका हुआ ही नहीं दिख रहा था कि मारू तो कहां मारू, अभी इधर अचानक इधर उधर, इधर उधर, कभी पीछे कभी आगे, लेफ्ट राइट सब जगह भगवान इतनी रफ्तार से रथ को घुमा रहे थे कि भगदत्त कंफ्यूज हुआ। अब देखिए युद्ध के नियम के अनुसार यदि कोई प्रहार कर रहा है तो दोनों रथ पर हैं, यदि दोनों रथी हैं तो सारथी का कर्तव्य है कि रथ को रुका के रखें। तो भगदत्त उसका तो रथ रुका हुआ और भगवान अर्जुन के रथ को इसी रफ्तार से यहां वहां घुमा रहे हैं और ये भगवान को बोल भी नहीं पा रहा कि क्या कर रहे हो तुम। और अर्जुन भी भगदत्त से ज्यादा अर्जुन आश्चर्यचकित हुए कि ये भगवान कर क्या रहे हैं, अरे रुको मुझे मारना है उसको। भगवान न तो अर्जुन की सुन रहे थे न किसी और की, भगवान रथ को घुमाए जा रहे घुमाए जा रहे घुमाए जा रहे। और भगदत्त ये देखने के बाद उसे क्रोध आया भगवान के ऊपर, क्षत्रिय एक तो ज्यादा मुश्किल नहीं है क्रोध अंदर उनके लाना। तो भगवान ने ये इसलिए कर रहे थे ताकि इसको मुझ पे क्रोध आए। तो भगवान रुकते थे, भगदत्त उठा, फिर से भगवान रथ को यहां वहां घुमाते थे। तो इतने समय तक, बहुत समय बीत गया, भगवान रथ को एक जगह पर टिका ही नहीं रहे। और जब भगवान ने देखा कि भगदत्त अब पूरा आग बबूला हो गया, sufficiently he has become angry on me, when Lord saw that he came in front of Bhagadatta, Bhagadatta took the club, gada liya aur bhagwan ke upar prahar kiya gusse mein ki ruk kyun nahi rahe, aur bhagwan ne apni chhati par Bhagadatta ka prahar liya aur uske baad Bhagadatta ko dhyan mein aaya, oh my god, फिर भगदत्त को समय आया, अरे रे रे, फिर भगवान ने कहा एल जो भी ऐसे तो नहीं किया होगा। तो यहां पर हम उस उदाहरण को फिर से लेते हैं कि जैसे पलकें आंखों के ऊपर प्रहार नहीं होने देती, अपने ऊपर प्रहार लेती है पलकें, वैसे भगवान इस भगदत्त के साथ जो हुआ, तो भगवान ने प्रहार अपने ऊपर लिया, स्वयं के ऊपर लिया। और अर्जुन ने जब ये देखा, अर्जुन को भगवान ने फिर इसका इतिहास बताया, तो अर्जुन का हृदय द्रवित हुआ कि ये भगवान अपने स्वयं के ऊपर प्रहार लिए मुझे बचाने के लिए। तो ये है परफेक्ट फ्रेंडशिप, इसे कहते हैं बहुत ही दिव्य स्तर की मित्रता। तो इसलिए ये दो श्लोक हैं, इसके अंदर अर्जुन और भगवान की भावनाओं को जो आदान प्रदान हो रहा है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो अर्जुन ने फिर यह प्रश्न कैसे पूछा, लग रहा है कि अर्जुन भगवान पर डाउट कर रहे हैं। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत है कि आपका तो अभी अभी आधुनिक जन्म है परंतु विवस्वान तो सृष्टि के प्रारंभ में जन्मे। इट अपियर्स दैट अर्जुन इज डाउटिंग कृष्णास एटर्नैलिटी नित्यता। नहीं, श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य यदि आप पढ़ोगे इस श्लोक पर तो प्रभुपाद तात्पर्य की शुरुआत करते हैं ओवर हियर अर्जुन इज नॉट डाउटिंग कृष्णास एटर्नैलिटी। अर्जुन इनफैक्ट वॉन्ट्स टू एक्सटोल द ग्लोरीज ऑफ कृष्णा एंड अर्जुन थॉट आई कैन नॉट डू दैट। None of the warriors over here can do that. Only the person who can speak authoritatively about Krishna is Krishna himself. So how to make Krishna speak about himself? Asking this question. यहां से शुरुआत होता है समझने का कि क्या तात्पर्य है अर्जुन के इस प्रश्न का। तो अर्जुन ने जो पूछा अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत, हे कृष्ण आपका जन्म अपर है जबकि सूर्यदेव का जन्म पर। तो अब हम ये दो जो शब्द हैं अपर और पर, इसकी व्याख्या हमारे आचार्यों ने किस प्रकार से की है उसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो सबसे पहले इसका अनुवाद, दोनों शब्दों का अनुवाद। अनुवाद ये है, अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान आपका जन्म तो आधुनिक है, अभी अभी का है, विवस्वता प्राचीन, परम जन्म विवस्वता अपरम भवतो जन्म। तो भगवान को अर्जुन ये आधुनिक कहने से ये दर्शा रहे हैं अर्जुन कि आप जब भी कुछ करते हो, चाहे बोलते हो चाहे कुछ करते हो, आपका कथन आपके कर्म वो आधुनिक समाज के लिए एप्लीकेबल है। ये एक तात्पर्य है अर्जुन के भगवान को आधुनिक बोलने का। तो यहां पर बलदेव विद्याभूषण चक्रवर्ती ठाकुर हमारे आचार्य, उनकी टीका इस प्रकार से है, थ्रू दिस वर्ड अपरम अर्जुन इज एस्टैब्लिशिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ भगवद गीता इन द 21st century। आधुनिक है, हालांकि आपने प्राचीन काल में सुना है, एप्लीकेबिलिटी अभी भी वैलिड है इसका। और अपर, इसका एक और अर्थ ये है अपर और पर का। अर्जुन बोल रहे हैं, हमारे आचार्य इस पर टीका करते हैं, अर्जुन बोल रहे हैं कि विवस्वान तो पराए हैं पर, और आप जो हैं आप सबके अपने हो, आप सबके अपने हो अपर। तो ये दूसरा अर्थ है पर और अपर का। तो यहां पर अर्जुन भगवान को अपरम बोलकर क्या बता रहे हैं कि भगवान एक तो आपकी लीलाएं, आपके आदेश, विशेष रूप से भगवद गीता आधुनिक काल के लिए भी उपयोगी है। क्यों? क्योंकि आप सबके अपने हो, सबके हृदय में अंतर्यामी रूप में। तो अर्जुन यहां पर मानो कि एक, मैं बोल रहा था ना सिविलाइज्ड व्यक्ति कैसे, तो सिविलाइज्ड व्यक्ति का जब गुणगान होता है तो वो तुरंत उसको डाउन प्ले करना चाहता है, अनसिविलाइज्ड व्यक्ति का कोई गुणगान करे, मानो अर्जुन के बदले दुर्योधन वहां पर होता और भगवान बोलते भक्तों से में सखा चेत, तो दुर्योधन बोलता है अभी पता चला। तो अर्जुन यहां पर ये जो अपरम का ये अर्थ है, कौन सा अर्थ? अपना। तो अर्जुन यहां पर कह रहे हैं कि भगवान सभी आपके अंश हैं और आप सभी के हृदयों में परमात्मा के रूप में हो, तो मैं कोई इतना विशेष नहीं हूं। अर्जुन की नम्रता वो बता रहे हैं, मैं उसको इतना विशेष नहीं हूं, आप सबके लिए ऐसे ही व्यवहार करते हो। लेकिन भगवान क्या बोल रहे थे कि नहीं, सब मेरे अंश हैं, वो दुर्योधन खड़ा वो भी मेरा अंश ही है, लेकिन करतूत देख उसकी। लेकिन अर्जुन यहां पर एक सुसंस्कृत व्यक्ति के वचन कैसे होने चाहिए वो बता रहे। तो अब हम यदि ये जो आधुनिक वर्ड अगर इसको लें, मॉडर्न एप्लीकेबिलिटी ऑफ भगवद गीता, कई बार लोग भगवद गीता को लेकर ये प्रश्न पूछते हैं ना, तो आज का श्लोक उसका उत्तर है। कई बार ये प्रश्न पूछते हैं, क्या भगवद गीता अभी जो मैं 2014 21वीं सदी में मैं जो जी रहा हूं, क्या मेरे प्रॉब्लम्स को ये भगवद गीता आपका सॉल्व कर सकता है? Is it that modern? Is it that modern? Just like my problems are modern. उसको लगता है मेरे problems कितने modern हैं? जैसे आज ही एक व्यक्ति मुझसे बात कर रहे थे, तो अपने problems के बारे में बता रहे थे, तो मैंने उनको कहा, जस्ट लाइक कृष्णा हैज मेड दिस मटीरियल वर्ल्ड टेम्पररी, यू आर इन दिस मटीरियल वर्ल्ड एंड योर प्रॉब्लम इज इन दिस मटीरियल वर्ल्ड, सो वॉट इज द कंक्लूजन? यू एंड योर प्रॉब्लम्स आर बोथ टेम्पररी। तो कई बार हमको लगता है कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं कि आपके भगवान भी सॉल्व नहीं कर सकते। ये भी अलग प्रकार का ईगो है लोगों का। मुझे मिलते हैं बहुत से ऐसे, बोलते हैं कि नहीं 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 मैं इतना पाप किया हूं, आपका ये महामंत्र कुछ नहीं कर सकता। उसने यहां तक बोल दिया कि एक कारण है मैं आपका महामंत्र जप क्यों नहीं करता, ये हरे कृष्णा। मैंने पूछा क्यों नहीं करते? क्योंकि यदि मैं इसको करने लग जाऊंगा, आपको पता नहीं मैंने कौन कौन से पाप किए हैं, यदि मैं मुझ जैसा पापी आपका ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करने लग जाएगा, तो मैं हरे कृष्ण महामंत्र को दूषित कर दूंगा। अच्छा, और मैं, और यदि आपका हरे कृष्ण महामंत्र दूषित हो गया तो पूरी आपकी संस्था दूषित हो जाएगी, इसलिए एज अ सर्विस ये मेरी तरफ से डोनेशन है, मैं नहीं इसलिए करता। तो भगवद गीता मॉडर्न एप्लीकेबिलिटी, इंडिविजुअल लेवल, फैमिलियल, सोशल, नेशनल, ग्लोबल। यदि कोई कहे कि व्यक्तिगत रूप से भगवद गीता मेरे लिए क्या कर सकती है, तो व्यक्तिगत रूप से अर्जुन, अब देखिए अर्जुन का ही उदाहरण हम लें, भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई, व्यक्तिगत रूप से अर्जुन स्ट्रेस में चले गए थे, विषाद में चले गए थे, तो व्यक्तिगत रूप से अर्जुन का विषाद दूर हुआ। और अर्जुन जो फैमिली के प्रॉब्लम लेके बैठे हुए थे, तो भगवान ने गीता सुनाकर अर्जुन के फैमिली प्रॉब्लम को ठीक किया। अर्जुन जो फर्स्ट चैप्टर में सोसाइटी के प्रॉब्लम सुना रहे थे, कि सोसाइटी का क्या होगा, ये लोग सब मर जाएंगे, तो भगवान ने सोशल जो प्रॉब्लम्स हैं वो गीता सुनाकर दूर किए। और न केवल हस्तिनापुर का राज्य, न केवल हस्तिनापुर में धर्म की स्थापना, नॉट जस्ट ऑन अ नेशनल लेवल, परंतु भगवद गीता भगवान ने इस हिसाब से सुनाई कि आज दिन तक चाहे कोई अफ्रीका में रह रहा हो, चाहे कोई अमेरिका में, चाहे कोई लंदन में, चाहे कोई ऑस्ट्रेलिया में, चाहे कोई भारत में, कहीं पर भी प्रभुपाद ने जो गीता एज इट इज प्रेजेंट की है, एवरीवन एवरीवेयर ग्लोबली दे आर सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स यूजिंग द नॉलेज ऑफ गीता। केवल इतना ही नहीं, यदि हम अब देखिए धर्म की स्थापना, कृष्ण प्रेम, हृदय द्रवित होना, ये सब तो कोई कहेगा कि नहीं ये सब मुझे नहीं चाहिए भाई, मेरे हेल्थ प्रॉब्लम्स है, उस आपकी गीता हेल्थ प्रॉब्लम को ठीक कर सकती है। हां, गीता हमको एक ऐसा हेल्दी लाइफस्टाइल देती है, युक्ताहार विहारस्य, वो जो श्लोक है उसके अंदर भगवान कैसे बैलेंस्ड आहार आपका होना चाहिए, आपकी नींद बैलेंस होनी चाहिए, आपका विहार बैलेंस होना चाहिए, आपके हेल्थ को ठीक करने के लिए अगर खाली आप उस पर ही फोकस करना चाहते हैं तो भी गीता के अंदर उसका सोल्यूशन है। और इसलिए देखिए बहुत से हमारे भक्त वो कहते हैं कि जिस प्रकार का लाइफस्टाइल उनका पहले था और अभी जो लाइफस्टाइल हुआ है, जो स्ट्रेस लेवल था पहले और अभी गीता के आदेशों का पालन करने के बाद जो उनका स्ट्रेस लेवल कम हुआ है और उसके वजह से जो उनका ओवरऑल मेंटल स्पिरिचुअल हेल्थ, मेंटल फिजिकल स्पिरिचुअल हेल्थ वो पूरा इंप्रूव हुआ है, न केवल हेल्थ प्रॉब्लम्स, कोई कहे कि भाई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, आपकी गीता मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, कैसे कैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आर्थिक समस्याएं, देखिए व्यक्ति के जीवन में आर्थिक समस्याएं आजकल आ रही हैं इम्बैलेंस्ड लाइफस्टाइल के वजह से, ग्रीड के वजह से, लोभ के वजह से, तो भगवान संतुष्टि के विषय में जो बोल रहे हैं, सैटिस्फैक्शन के विषय में जो बोल रहे हैं कि कैसे वीतराग भय क्रोध, इसी अध्याय का श्लोक है कि कैसे इन सब से, वीतराग भय इन सब से दूर होना और अपने जीवन को बैलेंस करना, जो प्रभुपाद ने चार नियम दिए हमारे बैलेंस लाइफस्टाइल। इसलिए बहुत से डिवोटीज उनका ये एक ऑब्जर्वेशन है कि जो पहले वो घर खर्च करते थे इस्कॉन में आने से पहले, अब इतना कम हो गया, कांदा का भाव पता है ना आपको, तो चार नियम, कोई अगर चार नियम भी पालन कर रहा है तो उसका कितना खर्चा कम हो जाएगा, और चार नियम के अंदर जो और डिटेल्स हैं कि होटल का नहीं खाना, भगवान को भोग चढ़ा के खाना, होटल का नहीं खाना, अब देखो होटल में कितना खर्चा करते हैं लोग, तो चार नियम में अगर उसका पालन करें तो वहां पर से खर्चा कम हो गया, मांसाहार नहीं, नशा नहीं, चाय कॉफी नहीं, ये नहीं वो नहीं, बचा क्या फिर, बचा ये कि आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया चार नियम ने। कोई कहे रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, भगवत गीता का मॉडर्न एप्लीकेबिलिटी क्या है रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स? रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स शुरू किससे होते हैं? अहंकार। कंटिन्यू किस पर होते हैं? अहंकार। खत्म कैसे होंगे? जब अहंकार को खत्म करेंगे। तो भगवान रिलेशनशिप इश्यूज को सॉल्व करने के लिए भगवान जो 13वें अध्याय में पॉइंट्स दिए हैं, 20 पॉइंट्स ऑफ नॉलेज 13वें अध्याय में भगवान, उसका फर्स्ट पॉइंट है अमानित्वम। अमानित्वम मतलब नम्रता। और बाकी जो उसके पूरे 19 पॉइंट्स आप पढ़ोगे तो उस नॉलेज के बलबूते पर कोई कैसे अपने रिलेशनशिप इश्यूज को सॉल्व कर सकता है। कोई यदि कहे कि भाई ये जो जातिवाद है, कम्युनल इश्यूज है, ये इस धर्म का है, ये उस धर्म का है, मार पीट रहे हैं एक दूसरे को, ये इस जाति का उस जाति का है, तो भगवान ने उसको सॉल्व कैसे किया है? दूसरे अध्याय में कर दिया। हम शरीर ही नहीं है, जाति छोड़ो, लोग ये शरीर को लेके जाति वाति पकड़ते हैं ना कि मैं इस जाति का हूं, मैं उस जाति का हूं। भगवान करे, भगवान ने कहा कि अरे भाई, सबसे पहले तो मैं बोल रहा हूं कि ये शरीर तो मरा हुआ है, तुम तो आत्मा हो। और आत्मा, भगवान ने कहा, सब एक जाति के हैं, मेरे अंश हैं। तो यदि कोई दूसरे अध्याय के इस फंडामेंटल प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, देयर विल बी नो कम्युनल इश्यूज। और अगर कोई, आजकल बहुत लोग इकोलॉजिकल इश्यूज को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि ये वातावरण, पर्यावरण हमारा इतना जो दूषित हो रहा है, इसके लिए क्या? तो पूरी जो भगवद गीता की जीवन शैली है, वो पूरी जीवन शैली हमारे एनवायरमेंट को, न केवल हमारे एनवायरमेंट को, जैसे राधानाथ महाराज से मेनका गांधी मिली थी तो उन्होंने पूछा राधानाथ महाराज को कि व्हाट इज योर हरे कृष्णा मूवमेंट डूइंग फॉर द एनवायरमेंट। उस समय वो, पता नहीं आज भी वो मिनिस्टर है क्या, तो उन्होंने वो पूछा था, व्हाट इज योर हरे कृष्णा मूवमेंट डूइंग फॉर द एनवायरमेंट। तो राधानाथ महाराज ने सुंदर उत्तर दिया, वी आर ट्राइंग टू प्यूरिफाई द एनवायरमेंट ऑफ द हार्ट, बिकॉज द पॉल्यूशन इन दिस एनवायरमेंट बिगिंस फ्रॉम द हार्ट। So if we look into all these issues and problems at various levels, Bhagavad Gita has answer for every single problem. Whether it is communal, environmental, financial, health, individual, familial, social, national, global, name it. Therefore, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur said, there is only one problem and there is only one solution. The problem is lack of Krishna consciousness and the solution is Krishna consciousness. तो आधुनिक जो अर्जुन ने अपरम भगवान को कहा है, तो हमारे आचार्य कहते हैं अपरम का अर्थ क्या है? आधुनिक applicability of गीता, वो अर्जुन बता रहे हैं। अब अर्जुन उवाच कि अर्जुन ने तुरंत भगवान को रोककर अब बीच में बोला, बलदेव विद्याभूषण कह रहे हैं भगवान बोल रहे थे कैसे तुम मेरे भक्त हो, सखा हो, तो अर्जुन तुरंत वो सुन के, और वो सेकेंड लाइन थी, सॉरी थर्ड लाइन थी, वो पिछले श्लोक की थर्ड लाइन, भक्तों से मैं सखा चेती रहस्य मित। तो अर्जुन केवल उतना सुनने के बाद भगवान को बीच में रोके और अर्जुन ने कहा, तो अर्जुन यहां पर जो पिछले श्लोक में भगवान ने उनके एवं अर्जुन की मित्रता को भगवद गीता समझने का रहस्य बताया, तो तुरंत अर्जुन ने यह सोचा। अब देखिए, अर्जुन जैसे शुद्ध भक्त की जो सोच है वो कितनी रिफाइंड और सूक्ष्म हो सकती है। तो अर्जुन ने जैसे ही सुना स्वयं का गुणगान और भगवान कर रहे हैं, तो अर्जुन ने सोचा कि भगवान ने मेरा तो गुणगान कर दिया लेकिन इनका गुणगान कौन करेगा, मैं यदि करूं तो मुझ पर कौन विश्वास करेगा, और मुझे तो इनके बारे में पूरा पता ही नहीं है कि इनके गुण कितने हैं, और तो 64 करोड़ यहां पर जो उपस्थित है उनमें से तो कोई है ही नहीं, तो एक ही व्यक्ति है जो इनके बारे में ठीक ठीक पूरा पूरा बता पाएंगे, और वो है ये स्वयं। क्यों ना फिर मैं इनसे ऐसा प्रश्न पूछूं, क्योंकि मैं डायरेक्टली पूछूंगा तो ये शायद नहीं बताएं, तो क्यों ना मैं ऐसा प्रश्न पूछूं। इसलिए इसके बाद के जो श्लोक आप पढ़ोगे उसके अंदर भगवान श्री भगवान उवाच चालू हो गया, फिर भगवान बता रहे हैं बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तवज अर्जुन, कि कैसे मैं उस समय भी था, वर्तमान में भी हूं, आगे भी रहूंगा, सब कुछ मैं जानता हूं। तो भगवान ने फिर शुरू कर दिया, तो अर्जुन का जो प्रयोजन सिद्ध हुआ अगले श्लोक से हम देखेंगे उसको। तो इसलिए अर्जुन उवाच मतलब अर्जुन तुरंत बोले, भगवान को बोलने नहीं दिया आगे, अर्जुन लगा ये आगे मुझे और ग्लोरीफाई करेंगे। तो बलदेव विद्याभूषण कह रहे हैं कि अर्जुन जैसे नम्र भक्त वो चाहते हैं कि भगवान का प्रचार हो मेरा नहीं। तो यहां पर बलदेव विद्याभूषण हमारे आचार्य कहते हैं कि अर्जुन एक प्रचारक की भूमिका निभा रहे हैं। अभी एक प्रचारक कौन होता है, जो अपना पूरा जीवन केवल भगवान के गुणगान करने में लगा दे, उसका सर्वस्व केवल वही है, और वो अर्जुन यहां पर तुरंत भगवान को रोककर अपना जो श्लोक बोले हैं उसके द्वारा कर रहे हैं। तो अर्जुन उवाच का ये महत्व है। अब हम अर्जुन नाम, जो उनको ये नाम अर्जुन मिला हुआ है, इसकी व्याख्या करेंगे। बहुत ही सुंदर व्याख्या है अर्जुन नाम की। तो इसका यदि हम विभाजन करें तो तीन विभाजन इसके होंगे, अ ऋजु और न। तो हमारे आचार्य इसकी टीका इस प्रकार से की हैं, अ का एक और अर्थ उन्होंने भगवान श्री विष्णु या भगवान श्री कृष्ण ये बताया है, ऋजु का अर्थ बताया है ऐसी वस्तु जो टेढ़ी मेढ़ी न होकर बिल्कुल सीधी हो। अब आपको लग रहा होगा केवल इतना लिख देना काफी था सीधी हो, लेकिन बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि जानबूझकर इसका अनुवाद इस प्रकार से किया गया है कि क्योंकि कलयुग में हर वस्तु को टेढ़ी मेढ़ी कर जब तक प्रस्तुत नहीं किया जाता तब तक इंप्रेसिव नहीं बनता है, तो इसलिए ऋजु का अनुवाद बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार से करते हैं, ऐसी वस्तु जो टेढ़ी मेढ़ी न होकर बिल्कुल सीधी हो। और न का अर्थ है रिक्त या खाली। अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्या मतलब अर्जुन का, और कंफ्यूज हो गया, कंफ्यूज मत होइए, अब पूरा अर्थ यहां पर है। देखिए, ऐसा व्यक्ति जो श्री कृष्ण के समक्ष बिल्कुल सरल हो, जिसमें छल कपट का पूर्ण रूप से अभाव हो, रिक्त मतलब उससे खाली हो, जिसके हृदय में श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई विचार न हो, उसे कहते हैं अर्जुन। तो यदि भगवद गीता हमें समझनी है अर्जुन के पदचिन्हों पर चलते हुए, इसलिए गीतामृत जब हमने प्रारंभ किया था कुछ वर्षों पहले तो हमने इसका एडवर्टाइजमेंट इस प्रकार से किया, अपने अर्जुन अंदर के अर्जुन को जगाइए। तो यदि हमें हमारे अंदर के अर्जुन को जगाना है, अंदर के अर्जुन का अर्थात ये जो अर्जुन नाम की व्याख्या है, यदि हमें भगवत गीता समझनी है तो हमें हमारे अंदर इस प्रकार के अर्जुन को जगाकर बाहर निकालना है। कौन से प्रकार का अर्जुन? जो अर्जुन श्री कृष्ण के समक्ष बिल्कुल सरल हो, जिसमें छल कपट का पूर्ण रूप से अभाव हो, जिसके हृदय में श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई विचार ना हो, वो अर्जुन की तरह भगवत गीता समझकर अपने जीवन में उतार सकता है। तो यशोदा दामोदर, अब देखिए भगवान के जो भक्त हैं इन्होंने कितनी सरलता से भगवान के हृदय को जीता। इसलिए बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि ये एक कारण था कि भगवान ने अर्जुन को चुना गीता सुनने के लिए, गीता का उपदेश देने के लिए अर्जुन को चुना, क्योंकि अर्जुन बहुत सरल, सिंपल, बिना छल कपट के। और ये इसलिए श्रील प्रभुपाद भी अक्सर, श्रील प्रभुपाद का एक बहुत ही फेमस क्लासिक स्टेटमेंट है, कृष्ण कॉन्शियसनेस इज सिंपल फॉर द सिंपल एंड कॉम्प्लिकेटेड फॉर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पर्सन। क्यों प्रभुपाद ने ये कहा और क्यों अर्जुन का जो नाम हमने अभी समझा है, कलयुग में, कलयुग की एक विशेषता है, जब तक चीजों को जटिल कर कर नहीं बताओ तब तक लोग कहते हैं कि वैल्यू नहीं है इसका। उनको एकदम कॉम्प्लेक्स करके, अगर प्रवचन भी होगा तो एकदम ऐसे शब्द इस्तेमाल करो कि बिल्कुल ओवरहेड ट्रांसमिशन जा रहा है ऊपर से, और उसके बाद में उनको पूछो, कोई जाके पूछता है, भाई कैसा था प्रवचन? जोरदार, क्या बोला? वो मत पूछो। जैसे यहां पर हमारे ब्रह्मचारी आश्रम में अंदर एक वो आरओ सिस्टम लगाया हुआ है पानी प्यूरिफाई करने का, तो वो ये कोई केंट कंपनी का है। तो उन्होंने क्या किया है, देखो मार्केटिंग ये टैक्टिक इनकी होगी, तो वो जो पूरा आरओ सिस्टम है अंदर जो भी उसका मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म दिखाने के लिए उसके ऊपर जो ढक्कन है उसको ट्रांसपेरेंट रखा है। तो लोग जब देखेंगे कि आपके पानी को शुद्ध करने के लिए देखो कितना कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म हमने यहां पे खड़ा किया है, तो उसको देखेंगे और बाप रे यहां से यहां पानी कहां जाता है, कहां से निकलता है, कहां पे आता है, खरीदो खरीदो भाई, काम है इसमें, दम है इसमें। क्यों दम है? क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स उसको मैकेनिज्म दिखाया है, ट्रांसपेरेंट लगाया है उसके ऊपर। अगर उसके ऊपर रेगुलर ऐसा ढक्कन लगाते कि अंदर कोई दिखाई नहीं देता तो लोगों को लगता है कि यहां से पानी जा रहा है, यहां से निकल रहा है, इसमें इतनी बड़ी क्या बात है, इतने पैसे क्यों देने। लेकिन उसको जब दिखा दिया कि अंदर देखो कितना कॉम्प्लेक्स है, तो वैसे ही केवल हरे कृष्ण महामंत्र उससे भगवत धाम जा सकते हैं, इतना आसान नहीं होना चाहिए। अरे थोड़ा कुछ कॉम्प्लेक्स बताओ, कुछ ऐसा मंत्र बताओ कि हमको अंदर से झंझोड़ दे, ऐसा कोई मंत्र बताओ, बोल नहीं पाए ऐसा मंत्र बताओ। तो फिलॉसफी या कोई प्रोसेस, कलयुग में लोग कॉम्प्लेक्सिटी चाहते। जैसे प्रभुपाद, प्रभुपाद के कई बार प्रेजेंटेशंस, हर बार प्रभुपाद के प्रेजेंटेशंस इतने सिंपल हुआ करते थे। जैसे मुझे ये एक किस्सा याद आ रहा है प्रभुपाद की लाइफ का, प्रभुपाद अपने कमरे में बैठे जप कर रहे थे तो एक साइंटिस्ट मिलने आया प्रभुपाद से। अब देखो साइंटिस्ट जो होते हैं उनकी लैंग्वेज, उनकी सोच, हर समय वो हर चीज को बहुत साइंटिफिक तरीके से सोचने की कोशिश करते हैं, अच्छी बात है। तो प्रभुपाद के पास आए और प्रभुपाद से डिस्कशन कर रहे हैं, प्रभुपाद अपने रॉकिंग चेयर पर बैठे जप कर रहे थे, तो आए, सो स्वामी जी आई हैव हर्ड दैट यू डोंट बिलीव इन बिग बैंग थियरी। तो प्रभुपाद कुछ बोल नहीं रहे थे और ये साइंटिस्ट बोले, बिग बैंग थियरी क्या है कि विस्फोट हुआ जोर से, बहुत बहुत करोड़ों करोड़ों साल पहले बड़ा विस्फोट हुआ, बैंग हुआ और फिर सारी सृष्टि आ गई, सारे प्लैनेट सारी सृष्टि आ गई। तो प्रभुपाद चैंटिंग कर रहे थे, जप कर रहे थे और ये बोले जा रहा था, सो अकॉर्डिंग टू साइंस द बिग बैंग थियरी इज एक्सप्लेन्ड वेरी साइंटिफिकली बिकॉज ऑफ दिस फोर्स दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ दैट फोर्स द ग्रेविटेशनल फोर्स द सेंट्रिफ्यूगल फोर्स दिस पर्टिकुलर स्पीयर दैट स्पीयर दिस गैस दैट गैस दिस केमिकल दैट केमिकल ऐसे प्रभुपाद सुन रहे हैं, पूरा कॉम्प्लेक्स वो साइंटिफिक वो जार्गन यूज कर, उसके बाद में लास्ट में उसने बोल दिया एंड इट ऑल बिगैन विद दैट बिग बैंग। तो 15 मिनट तक वो बोलते जा रहा था फिर फाइनली प्रभुपाद ने खाली एक लाइन उसको पूछा, सिंपल क्वेश्चन पूछा, हु मेड द बैंग, खत्म। प्रभुपाद ने एक क्वेश्चन पूछा और उसके पास उसका आंसर ही नहीं था, हु मेड द बैंग, बिकॉज यू गेव रीजन दिस वॉज बिकॉज ऑफ दैट, दैट वॉज बिकॉज ऑफ दिस, दिस वॉज बिकॉज ऑफ दैट, फाइनली यू एंडेड टिल बिग बैंग, माई क्वेश्चन इज वाई डोंट गो फर्दर एंड आस्क हु मेड द बैंग। बोले हु मेड द बैंग, हु मेड द बैंग, हु मेड द बैंग, हु मेड द बैंग, आई डोंट नो हु मेड द बैंग। Prabhupada said, I'll tell you, Krishna made the bang, okay? Simple. किसी ने तो फोड़ा होगा। अरे दिवाली के पटाखे भी कोई लगाता है, तुम बड़े बड़े बिग बैंग को बोलते हो, किसी ने नहीं फोड़ा उसको। जैसे ऐसे ही बहुत से बड़े बड़े पंडित आए हुए थे प्रभुपाद से मिलने के लिए, गीता के ऊपर चर्चा कर रहे थे, प्रभुपाद ने एक क्वेश्चन पूछा, हु स्पोक गीता, टेल मी जस्ट हु स्पोक गीता। तो वो लोग अभी नो स्वामी जी एक्चुअली दैट हैज टू बी डिस्कस्ड हु स्पोक गीता, बिकॉज यू सी वी आर टॉकिंग अबाउट द परव्योम द एब्सोल्यूट ट्रुथ एंड द निर्विकल्प निर्विशेष एंड ऑल दैट। प्रभुपाद वेट अ मिनट, वो सरस्वती श्याम सुंदर प्रभु की छोटी सी लड़की 3 साल की, उसको बुलाया प्रभुपाद, प्रभुपाद हु स्पोक गीता, कृष्णा, हु इज कृष्णा, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। प्रभुपाद सेड शी इज अ बेटर स्कॉलर देन ऑल ऑफ यू। तो कलयुग की विशेषता क्या है, हर चीज को जटिल बनाना, कॉम्प्लेक्स बनाना। इसलिए अर्जुन अंदर है हमारे, अर्जुन का अर्थ जो सरल है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, सरल है, उस अर्जुन को पैदा होने नहीं देते, उसको पहले अबॉर्शन कर देते उसका। तो यहां पर अर्जुन कौन सी भूमिका निभा रहे हैं, एक प्रचारक की भूमिका निभा रहे हैं, भगवान का प्रचार करना चाहते हैं वो। तो भगवान के जो भक्त होते हैं, यहां पर हम यशोदा दामोदर का उदाहरण ले रहे हैं, यशोदा का अर्थ क्या है, जो भगवान के यश को दूसरों को देती है वो है यशोदा। और दामोदर लीला में हुआ क्या कि भगवान ने यशोदा ने भगवान का यश दूसरों को दिया, हमको दिया, दामोदर एक नाम भगवान को दिया, और भगवान ने उसी आदान प्रदान में यशोदा का यश बढ़ाया। एवं संदर्शित यंग हरिणा भृत्य वश्यत स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदं सेश्वरं वशे। भगवान ने सारे 33 करोड़ देवताओं को दिखा दिया कि मैं बंधा हुआ हूं यशोदा माई की भक्ति की वजह से। तो यश ये दामोदर लीला में दोनों ने एक दूसरे का यश बढ़ाया। ये है भक्त और भगवान की स्पर्धा जिसकी हमने शुरुआत में चर्चा की थी कि एक दूसरे का यश बढ़ाते रहते हैं। और उसमें जीतते कौन है, भक्त जीतते हैं हर समय, भक्त जीतते हैं कि भक्त भगवान का यश बढ़ाते हैं, भगवान भी अपने भक्त का यश बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन भक्त जो है वो अपनी भक्ति से भगवान का हृदय ऐसे द्रवित कर देते हैं कि वो भगवान का यश। तो ये एक बहुत ही सुंदर प्रेममय स्पर्धा भक्त और भगवान के बीच में चलती है। तो जैसे इसी लीला में हम देखें नलकुंवर और मणिग्रीव, नारद मुनि गए थे नलकुंवर और मणिग्रीव को प्रचार करने के, और उस समय नलकुंवर और मणिग्रीव उस स्थिति में नहीं थे कि वो नारद मुनि का लेक्चर सुन सके, वो पार्टी कर रहे थे अपनी, मंदाकिनी गंगा में स्त्रियों के साथ गीत गाते हुए नग्न अवस्था में नारद मुनि वहां पर लेक्चर देने गए। नारद मुनि को दुत्कार दिया इन्होंने। तो नारद मुनि ने सोचा कि ठीक है, भगवान का सानिध्य में दिलाता हूं इनको, तब जाकर इनका हृदय परिवर्तित होगा। तो नारद मुनि ने इनको जो शाप दिया उसको सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अनुग्रहार्थाय, अनुग्रह किया नारद मुनि ने इन दोनों के ऊपर। नंद भवन में दो वृक्ष बनाए, अर्जुन वृक्ष, और दामोदर लीला में भगवान ने इन दोनों का उद्धार क्यों किया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं और जीव गोस्वामी भी कहते हैं कि भगवान जब उखल से बंधे हुए माता यशोदा ने बांध दिया, तो भगवान ने ये दोनों वृक्षों को देखा और इन दोनों वृक्षों को देखकर भगवान ने नारद मुनि को याद किया कि नारद मुनि ने इनके ऊपर कृपा की है तो मुझे अवश्य ही इनका उद्धार करना है। तो यहां पर भी नलकुंवर मणिग्रीव उद्धार में भगवान नारद मुनि का गुणगान करने के लिए इनका उद्धार किया। और नलकुंवर और मणिग्रीव यहां पर आप देख रहे हो कि दोनों भगवान के सामने जब उन्होंने प्रार्थना कही तो अपनी प्रार्थना में भी वो नारद मुनि का गुणगान ज्यादा कर रहे हैं, वो भगवान का नारद मुनि से कम गुणगान कर रहे हैं, नारद मुनि का ज्यादा गुणगान कर रहे हैं कि नारद मुनि उनके वजह से हमको आपका सानिध्य प्राप्त हुआ, आपका दर्शन, आपकी कृपा। तो ये स्पर्धा हर समय भक्त और भगवान के बीच में चलती रहती है। भक्त का प्रचार भगवान करना चाहते हैं, भगवान का प्रचार भक्त हर समय करना चाहते हैं। अब प्रश्न है, क्या मैं प्रचारक बन सकता हूं, या यदि मैं भक्त बनना चाहता हूं तो क्या मुझे प्रचारक भी बनना पड़ेगा? हाउ कैन आई प्रीच? तो एक सुंदर कोट है सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी, इनका प्रीचिंग के बारे में मुझे आज दिन तक इससे सुंदर कोट नहीं मिला है प्रीचिंग के ऊपर, जो सेंट फ्रांसिस ने कहा। उन्होंने प्रीचिंग के विषय में कहा, वन शुड प्रीच ऑल डे लॉन्ग एंड इफ वन गेट्स एन अपॉर्चुनिटी देन वन कैन स्पीक ऑल्सो। अर्थात कि हमें बोलने से ज्यादा अपने उदाहरण से प्रचार करना है। यदि मौका मिले तो बोलो भी, नहीं तो अपने कर्मों से प्रचार करो, अपने उदाहरण से, अपना व्यवहार से प्रचार करो। तो यदि हम कुछ आदर्श प्रचारक लें, उनका उदाहरण, तो अर्जुन का उदाहरण सबसे पहले। अर्जुन ने प्रचार कैसे किया? युद्ध को लड़कर। यदि हमें यह लग रहा होगा कि प्रचार मतलब मुझे लेक्चर देना आना चाहिए, नहीं, जो अर्जुन की खूबी थी, जो उसका स्वधर्म था, वो अर्जुन ने किया और उसके द्वारा उसने धर्म की स्थापना की। अर्जुन प्रीच्ड बाय फाइटिंग अ वॉर। मदर यशोदा शी प्रीच्ड बाय पर्सनली सर्विंग कृष्णा लविंगली। तो यहां पर क्या समझ में आ रहा है कि कई बार हम, श्रील प्रभुपाद ने जो ये हरिनाम संकीर्तन का आंदोलन दिया है, तो अर्जुन ने क्या किया? मिशनरी एक्टिविटी किया भगवान श्री कृष्ण, यशोदा माई ने पर्सनल सर्विस। तो यदि कोई पर्सनल सर्विस करना चाहता है वो भी प्रचारक बन सकता है यशोदा माई जैसा, जैसे यशोदा माई ने दामोदर भगवान का गुणगान करवाया दामोदर लीला के द्वारा। और यदि कोई मिशनरी एक्टिविटी में लगना चाहता है भगवान के, तो वहां पर भी वो प्रचारक बन सकता है अर्जुन की तरह। सुदामा का उदाहरण है, जो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए एक प्रचारक बने, कि कैसे उन्होंने अपने गृहस्थ आश्रम से भगवान को अपना सर्वस्व अर्पित किया और भगवान ने उन्हें सर्वस्व दिया। तो जब उनके पास कुछ नहीं था तब भी उन्होंने अपना सब कुछ भगवान को दिया, और जब भगवान ने उनको सब कुछ दे दिया, सारा ऐश्वर्य दे दिया, तब भी वो भगवान को ही अर्पित करते थे। ये है आइडियल गृहस्थ प्रीचर। नारद मुनि जो कि एक सन्यासी के रूप में उन्होंने एक प्रचारक की भूमिका निभाई, और इतने सुंदर तरीके से नारद मुनि ने ऐसे ऐसे लोगों को प्रचार किया है, लंबी चौड़ी लिस्ट है नारद मुनि ने किन किन को प्रचार किया है। तो यहां पर देखिए, अर्जुन जो भगवान के मिशन में डायरेक्ट संलग्न होकर प्रचारक बने, यशोदा माई जो ब्रज में एक गोपी रहकर भगवान की व्यक्तिगत सेवा कर प्रचारक बनी, सुदामा एक आइडियल गृहस्थ बनकर प्रचारक किए, नारद मुनि एक आइडियल सन्यासी बनकर प्रचारक किए। तो कोई नहीं कह सकता कि अरे मैं तो गृहस्थ हूं मैं प्रचारक कैसे बनूं, अरे मैं तो एक योद्धा हूं मैं कैसे प्रचारक बनूं, मैं तो एक सन्यासी हूं मैं ये हूं वो हूं। नहीं, सारे उदाहरण हैं जिन्होंने कैसे प्रचार किया है। सेंट फ्रांसिस का जो कोट था पहले, वन शुड प्रीच ऑल डे लॉन्ग बाय वन्स एग्जाम्पल एंड इफ वन गेट्स एन अपॉर्चुनिटी वन कैन स्पीक ऑल्सो। सो प्रीचिंग डजंट मीन ओनली लेक्चरिंग, समटाइम्स और मेनी टाइम्स प्रीचिंग बिगिंस आफ्टर द लेक्चर ऑफ द व्यासासन। तो श्रील प्रभुपाद ने जो भगवान श्री कृष्ण को एज इट इज प्रस्तुत किया, तो प्रभुपाद का उदाहरण यदि हम देखें तो प्रभुपाद ने ये नहीं कहा वहां जाकर कि मैं तुम्हें सन्यासी बनाने के लिए आया हूं, या मैं तुम्हें एक टिपिकल जो हरे कृष्ण होता है वो बनाने आया हूं। प्रभुपाद ने ऐसे व्यक्तियों को प्रचार किया और उनको प्रचारक बनाया। जैसे यदि हम जॉर्ज हैरिसन का उदाहरण लें, जो कि बीटल्स जो उनका रॉक ग्रुप था उसके वो गिटारिस्ट और सिंगर, और इतने प्रसिद्ध ये बीटल्स हुए थे उस जमाने में, और जॉर्ज हैरिसन प्रभुपाद से मिले और वो जप करना शुरू किए। जॉर्ज हैरिसन इतने वहां उस समय के प्रसिद्ध गायक कलाकार, तो वो ज्वाइन करना चाहते थे एज अ ब्रह्मचारी एज अ सन्यासी। प्रभुपाद ने कहा नहीं। प्रभुपाद ने उनको आदेश दिया कि तुम्हारे अंदर जो कला है उस कला को यूज कर प्रचार करो। और जॉर्ज हैरिसन ने जो गीत गाया, उन्होंने जो गीत कंपोज किए माई स्वीट लॉर्ड इत्यादि, कितने वेस्ट के डिवोटीज जो अभी डिवोटी बने हुए हैं वो जॉर्ज हैरिसन के उन गीतों को सुनकर हरे कृष्णा के कांटेक्ट में आए। और इतना ही नहीं, जॉर्ज हैरिसन जब अंतिम समय मृत्युशैया पर थे तो जॉर्ज हैरिसन हरे कृष्णा की बीडबैग उनके पास थी, और श्याम सुंदर प्रभु मुकुंद महाराज वो वहां पर, और कोई नहीं, इतने वो प्रसिद्ध थे लेकिन और कोई उनके मृत्यु शैया पर नहीं आया। ये लोग आकर प्रभुपाद को याद करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र जप करते उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। तो ये उनका उदाहरण। यदि आप मिस्टर अल्फ्रेड फोर्ड को जानते हो तो वो प्रभुपाद के शिष्य बने अम्बरीश दास। जैसे जॉर्ज हैरिसन ने प्रभुपाद को पूछा था, प्रभुपाद कैन आई गेट इनिशिएटेड बाय यू, प्रभुपाद सेड यू हैव यू आर ऑलरेडी इनिशिएटेड, लुक एट योर नेम, हरिसन, जॉर्ज हरिसन, यू आर ऑलरेडी इनिशिएटेड. अल्फ्रेड फोर्ड, द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ हेनरी फोर्ड, फोर्ड कंपनी गाड़ी. तो एक बार अल्फ्रेड फोर्ड, अम्बरीश प्रभु, ये इतने रिफाइंड व्यक्ति हैं, मैं पर्सनली मिला हूं इनसे. एक्चुअली मेरी मुलाकात हुई थी बंबई के JW मैरियट होटल में इनसे. तो ये कुछ साल पहले बॉम्बे आए थे और उस समय पूरे न्यूज़पेपर में न्यूज था कि अल्फ्रेड फोर्ड हैज कम टू बॉम्बे, बॉम्बे टाइम्स में, और बहुत न्यूज था अल्फ्रेड फोर्ड हैज कम टू बॉम्बे. तो इनको राधानाथ महाराज के कुछ लेक्चर्स के सीडीज चाहिए थे, तो इन्होंने राधानाथ महाराज को फोन किया कि आपकी कुछ लेक्चर के सीडीज मुझे चाहिए, मैं अमेरिका जा रहा हूं परसों. तो राधानाथ महाराज ने मुझे कहा कि जाकर JW मैरियट में अमरीश प्रभु को ये सीडीज दो. तो मैं अभी पहली दफा, यदि आपको पता है JW मैरियट जो होटल बंबई में कहाँ है, कितना बड़ा है, तो मुझे भी कोई अंदाजा नहीं था. तो मैं ऐसे ही टैक्सी लेकर गया और मैं चलकर अंदर जा रहा था. जनरली उधर से गाड़ियों में ही आते हैं, 5-star होटल है वो. तो अब सब जगह वहां पर वो न्यूज रिपोर्टर्स वगैरह सब लोग, वो अल्फ्रेड फोर्ड का न्यूज फोटोज वगैरह लेने के लिए. तो मैं वहां पर गया इस ड्रेस में, तो इतना बड़ा उसका गेट, और वो गेट पर वो एक सरदार जी खड़े हुए चौकीदार के रूप में, सब वो पगड़ी वगड़ी बांधे हुए, दरवाजा को पकड़े हुए मेरे को देखते हैं. महाराज किधर, ओए किधर जा रहे हो? तो मैंने कहा नहीं, मुझे मिलना है किसी से. आपको इधर किससे, किससे मिलना? उसको ऐसे लग रहा था कि कोई घूमता फिरता साधु यहां पर आ गया, कटोरा भूल गया, ऐसे ही अंदर आ रहा है. तो मैंने कहा कि मिलना है, किससे मिलना है, कौन है बताओ. तो मैंने कहा अल्फ्रेड फोर्ड. ओह अच्छा. वापस से ऊपर से नीचे तक देखा मुझे कि ये, और क्योंकि न्यूज था कि JW मैरियट में अल्फ्रेड फोर्ड रह रहे, तो वो लॉबी में उन्होंने, अम्बरीश प्रभु ने मुझे देख लिया सैफरन के अंदर, तो वो बाहर आ गए. वो बाहर आ गए तो ये एकदम अटेंशन में आ गया अभी उनको देख के. उन्होंने कहा प्रभु जी प्लीज कम इनसाइड, आई थिंक यू ब्रॉट द सीडीज. मैंने यस प्रभु जी आई ब्रॉट द सीडीज. सरदार जी देखते रह गए, सरदार जी बोले ये तो ओरिजिनल अल्फ्रेड फोर्ड इनको लेने आए यहां पर. तो अंदर लेके गए लॉबी में, अम्बरीश प्रभु सबके सामने, उधर पूरी मीडिया थी सबके सामने, उन्होंने दंडवत किया मुझे. और फिर वहां पर लॉबी में सोफे पे बैठकर वो बातें करने लगे, पूछने लगे कि आप कब ज्वाइन किए, पहले क्या करते थे. इतने रिफाइंड जेंटलमैन. और उसके बाद में मैंने सीडीज और महाप्रसाद राधा गोपीनाथ का दिया, और सब होने के बाद फिर मैं बाहर आ रहा था. तो सरदार जी, अच्छा महाराज जी थोड़ा क्षमा कर देना, पता नहीं था हमको आप इनको इतने अच्छी से जानते हैं. बोला कोई नहीं कोई नहीं, बाद में फिर कभी आएंगे, आपसे मिलने आएंगे अभी. तो ये अम्बरीश प्रभु, प्रभुपाद से जब पहली दफा मिले तो उन्होंने अपना सर्वस्व प्रभुपाद को अर्पित किया. और ये प्रभुपाद से इंप्रेस इसलिए हुए कि प्रभुपाद इनके खानदान से इंप्रेस नहीं हुए. प्रभुपाद ने इनको इस प्रकार से प्रचार किया जैसे कि कोई भगवान का अंश उनके सामने आया है. तो इसलिए वो अल्फ्रेड फोर्ड प्रभुपाद के बहुत ही विश्वासु शिष्य बने, अम्बरीश प्रभु. और अम्बरीश प्रभु जो अद्भुत मंदिर मायापुर में बन रहा है, जिसका टोटल कॉस्ट 500 करोड़ है, ये 500 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए 250 करोड़ अभी तक अम्बरीश प्रभु ने दे दिए. क्योंकि प्रभुपाद के जाते समय, उनके निधन के समय, इन्होंने प्रभुपाद को उस अद्भुत मंदिर के लिए ये अपना योगदान देगा, वो प्रॉमिस इन्होंने किया था. तो ऐसे ऐसे जो प्रचारक बने प्रभुपाद के संपर्क में आकर, तो प्रभुपाद ने दिखाया कि कैसे यदि तुम बहुत बड़े गायक कलाकार हो, यदि तुम बहुत बड़े उद्योगपति हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो या कोई सन्यासी हो, कैसे तुम भगवान का प्रतिनिधित्व कर सकते हो। और अब हम प्रभुपाद, ये मैं इसलिए आपको दिखाया हूं कि आपको लग रहा होगा कि अरे इस्कॉन तो इतनी बड़ी संस्था जिसमें अल्फ्रेड फोर्ड 250 करोड़ दिए अद्भुत मंदिर के लिए, अब तक जॉर्ज हैरिसन बीटल्स के, वो प्रभुपाद के संपर्क में आए, लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई। ये जो प्रभुपाद अमेरिका गए, इसकी शुरुआत कहां से हुई, तो मैं हमारे भक्ति चारू महाराज ने जो अभयचरण सीरियल बनाया उसके कुछ एपिसोड्स में से क्लिपिंग्स आपको दिखाऊंगा। तो इसमें प्रभुपाद जब अमेरिका जाने के लिए सुमति मोरारजी से मिलते हैं, और प्रभुपाद अमेरिका फ्लाइट में नहीं गए, एक कार्गो शिप में, पुरानी कार्गो शिप, उसके अंदर प्रभुपाद सुमति मोरारजी से गिड़गिड़ाकर निवेदन करते हैं कि मुझे एक फ्री टिकट आप दे दो, मैं आप कुछ नहीं मांगता। प्रभुपाद सुमति मोरारजी से कहते हैं कि इतनी बड़ी आपकी कार्गो शिप है, उसमें मैं एक बूढ़ा सन्यासी ज्यादा जगह नहीं लूंगा। और वो पूछती हैं कि क्यों जाना है आपको, तो वो कहते हैं कि मुझे मेरे गुरु महाराज को आदेश है उसको पूरा करने के लिए। और उनको 3 हार्ट अटैक आते हैं, लेकिन जब उनको वो हार्ट अटैक आते हैं, उस समय भगवान श्री कृष्ण केवल सपने में नहीं आते, प्रभुपाद लिखते हैं अपनी डायरी में, एक्चुअली कृष्णा केम, ही रिवाइव्ड मी एंड कृष्णा टोल्ड, क्यों ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। प्रभुपाद कहते हैं, कृष्णा टोल्ड मी, हे अभय चरण, यू आर माई फ्रेंड। अर्जुन को जैसे भगवान ने कहा भक्तों से में सखा, द सेम वर्ड्स कृष्णा यूज फॉर प्रभुपाद। एंड हाउ वी नो दैट कृष्णा कंसिडर्ड प्रभुपाद एज हिज फ्रेंड, बिकॉज कृष्णा एड्रेस्ड हिम जस्ट लाइक अ फ्रेंड एड्रेसेस, एंड कृष्णा गेव द अश्योरेंस दैट डोंट वरी, आई हैव मेड ऑल द अरेंजमेंट्स, यू जस्ट गो देयर, एंड जस्ट लाइक यू आर गोइंग टू प्रीच माई ग्लोरीज, आई विल मेक श्योर दैट योर ग्लोरीज आर ऑल्सो स्प्रेड आफ्टर दैट। तो हम पहला एपिसोड में से जो क्लिपिंग निकालेंगे वो सुमति मोरारजी से प्रभुपाद मिलते हैं, और उसके बाद फिर ये लाइट्स बंद कर देना। जलदूत में कैसे भगवान श्री कृष्ण का दर्शन प्रभुपाद को होता है एज अ फ्रेंड। जय श्री प्रभुपाद की। तो प्रभुपाद कहा करते थे कि मैं एक 70 वर्षीय बूढ़ा हिंदुस्तानी अकेले केवल 40 रुपए लेकर अमेरिका गया, और भगवान की कृपा से पूरे इस्कॉन की स्थापना उन्होंने की। तो वो हम सब भारतीयों को ये आह्वान कर रहे थे, इफ myself one Indian could do that in my ripe old age, what to speak of so many Indians who know the culture of Bhagavad Gita. If we all come together and follow in the footsteps of Arjun and Srila Prabhupada, we can extol the glories of Krishna, not just all over the world, to every single conditioned living entities, but all over the creation of Krishna. That is the sum and substance of this verse, wherein Krishna wants to glorify Arjun and Arjun wants to glorify Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. तो अब अगले श्लोक में, अगले बुधवार, भगवान श्री कृष्ण कैसे काल के भी परे हैं, ये वो श्री भगवान उवाच इस श्लोक से प्रारंभ करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की।
हरे कृष्णा। आज का जो महाप्रसाद है वो स्मित कृष्ण प्रभु और उनके परिवार ने स्पॉन्सर किया है। आज उनकी शादी को 43 साल पूरे हुए हैं, उसके उपलक्ष्य में उन्होंने प्रसाद स्पॉन्सर किया है। तो उनके लिए और उनके पूरे परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे 3 बार जोर से हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बहुत बड़ा मैराथन क्रॉस किया उन्होंने। और आज का स्वीट प्रसादम है वो हमारे करनल नायर प्रभु, उनके माँ का जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में उन्होंने स्पॉन्सर किया है। तो उनको भी धन्यवाद देंगे 3 बार जोर से हरि बोल बोल के। हरि बोल। आने वाले सैटरडे को, शनिवार को हमारे मंदिर में प्रेरणा प्रकार कार्यक्रम होगा, जो युवा स्टूडेंट्स के लिए होता है, बॉयज स्टूडेंट्स के लिए, एज ग्रुप 15 से 30 तक। ये फ्री प्रोग्राम होता है और इसका जो टॉपिक है वो है क्यूपिड मेड स्टूपिड आउट ऑफ मी। और इसके लिए बम्बई मंदिर से श्रीमान जुगावता प्रभु जो डॉक्टर है वो खुद आने वाले प्रेरणा लेने के लिए। तो जिनको भी इसके पासेस या पोस्टर चाहिए तो हमारे अतिथि सेवा की जो टीम रहेगी उनसे आप संपर्क करके इसके जो फ्री पासेस है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। ये शाम के समय सेमिनार होगा। और जो भी माताओं ने डीटी किचन और डीटी रूम के लिए फॉर्म भरे हैं तो उनको कृपया आप जल्दी से जल्दी ही देसाई माता जी और दिवाकर माता जी इनको सबमिट कर दें ताकि सेवाओं की शुरुआत अच्छे से हो सके। और जो भी भक्त आज हमारे मंदिर में पहली बार आए हैं उनको हम निवेदन करते हैं केवल 2 मिनट के लिए अपने जगह पे खड़े हो जाइए। जो भी भक्त आज हमारे मंदिर में पहली बार आए हैं केवल 2 मिनट के लिए अपने जगह पे खड़े हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब आपका कीमती समय निकाल के हमारे मंदिर में पधारे। हम यही प्रार्थना करते हैं भगवान से और श्री प्रभुपाद जी से कि आज की शाम आपके आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत रहे और भगवान की पूरी कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर रहे। इन सबका हम स्वागत करेंगे 3 बार जोर से हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। कृपया अपने जगह पे बैठ जाइए। जो भी पहली बार आए हैं, जो खड़े थे उनके लिए सूचना, अभी यहाँ पे कीर्तन होगा, कीर्तन के बाद सबके लिए बाहर महाप्रसाद होगा। तो महाप्रसाद लेने के बाद जो पहली बार मंदिर में आए उनके लिए स्पेशल गिफ्ट होगा। तो गिफ्ट हमारा अतिथि सेवा का जो टीम पीछे बाहर खड़ा रहेगा उनसे आप संपर्क कर सकते हैं और आपके जो गिफ्ट है उसको स्वीकार कर सकते हैं और उसके बाद में घर पे जा सकते हैं। हरे कृष्ण।